बाबा हम बच्चों को रोज सुबह सुबह भिन्न भिन्न मोतियों से सजाते हैं, कभी सोनार बनकर मूर्ति को बहुत सुंदर बनाते, कभी धोबी बनकर सटका भी लगाते। कभी सुप्रीम जज बनकर कठघरे में खड़े भी करते, लेकिन आज बाबा कहते मेरा मुख्य ऑक्यूपेशन है, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और सतगुरु भी हूं। ये बाबा का मुख्य ऑक्यूपेशन है। तो आज बाबा ने टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाया है। पढ़ाई के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे हिस्ट्री होती, ज्योग्राफी होती, मैथ्स होता। तो बाबा की पढ़ाई में सब कुछ आता है। हिस्ट्री आती है कि तुम क्या थे, क्या हो, क्या बनना है। मैथ्स में हमें पूरे जन्मों की कहानी बताते। तो आज स्टूडेंट बनकर बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा जैसे पूरा कोर्स भी करा रहे हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसके अंदर एक दो राज भी खोले हैं, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे क्राइस्ट की आत्मा पवित्र है, उसको क्रॉस पर चढ़ाया तो उसको तकलीफ होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। लेकिन जिस शरीर में प्रवेश किया उस शरीर को तकलीफ होती है। वो मिसाल देते हुए बाबा ने कहा कि बाबा के रथ को तकलीफ होती है तो शिव बाबा को तकलीफ होती है? नहीं होती है, रथ को होती है। शिव बाबा तो प्योर आत्मा है, लेकिन शिव बाबा तो इतनी पावरफुल आत्मा है कि वो तकलीफ में निकल भी चली जा सकती है। तो ऐसे बाबा ने पढ़ाया है। आज तो स्टूडेंट्स बनकर बैठेंगे। पहले पहले तो बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया है। आज है 18 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। जरूर बनना है मना अंडरलाइन किया। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? जैसे बताया बाबा का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है। उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं। किस लिए आते हैं? पुरानी दुनिया को नया बनाने। एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। कैसे जानेगा कि रोज भगवान सुबह सुबह आकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी कितना हाई एजुकेशन। तो ऐसा किसको पता होता तो भीड़ लग जाती। आज गीत बजा है, भोले नाच से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, शुभावा के सिवा कोई पतित दुनिया को पावन नहीं बना सकता, इसलिए उसको कहते बिगड़ी को बनाने वाला। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम मन, मैं आत्मा हूं और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है, शरीर क्या कहेगा फिर? शरीर भी कह सकता है कि मेरी ये आत्मा है। जैसे शुभावा कहते हैं तुम मेरे हो, और बच्चे क्या कहते? बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बाबा कहते मेरे बच्चे, बच्चे कहते मेरे बाबा, ऐसे शरीर और आत्मा का भी आपस में बहुत कनेक्शन है, लव हो गया है। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। बोलने में तो हर कोई बोलता है अरे मेरी आत्मा दुखी हो गई, मेरी आत्मा को दुख नहीं देना। लेकिन आत्मा का क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, ये ज्ञान नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है। आत्मा है, आत्मा है, ज्ञान है, लेकिन वो आत्मा हूँ, मैं ही हूँ, ये कॉन्शियस नहीं है। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सत्युग में पुण्य आत्मा थी। ये अभी हमको ज्ञान मिला है, इसलिए अभी हमें इन बातों की स्मृति रहती है। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सत्युग में सतो प्रदान अथवा सच्चा सोना थी। अब बाबा कहते सोना है नहीं, सोना तो एक मेटल है, एक वस्तु है, तो सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। माना सोना इतना प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, ये तो सोने जैसा है, तो उसका मैं मूल्य है, इसलिए कहते हैं मैं आत्मा सोने जैसी हूँ। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं अभी क्या कहेंगे? अभी तो गोल्डन एजेड नहीं है, अभी तो कहते हैं इम्प्योर हो। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे ही होती है, सतो होती है, फिर धीरे 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 तमो होती है। तो बाबा ने मिसाल दिया कि तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। ऐसे हर चीज का ऐसा होता है, बाल युवा वृद्ध हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड है, तब दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, कौन सा गीत सुना, बिगड़ी को बनाने वाले पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है, क्योंकि रावण राज्य है और सब पतित है। तो जब इतनी बिगड़ी हुई दुनिया है, तब बाबा बिगड़ी को बनाने आते हैं। सतयुग में सब पावन थे, उसको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है, ये सब बातें और कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, ये हमारी स्कूल में पढ़ाई जाती है, हमारी यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है पूरा। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानु वाच्य श्रीमद् भगवद् गीता। श्रीमद् माना श्रेष्ठ मत, तो श्रेष्ठ मत तो एक ही है ना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है, उसका नाम एक्यूरेट शिव है। अब जो ये टीचर बनकर बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा का लेसन पढ़ाया, अब परमात्मा का लेसन पढ़ा रहे हैं। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? शिव बाबा तो निराकार है, बिंदी है, उसकी जयंती कैसे मनाई जाए? जयंती माना बर्थडे, उसका जन्मदिन। तो शिव बाबा तो बिंदी है, उसका जन्मदिन कैसे मनाएं? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, वो तो देहधारी है, उसकी हिस्ट्री बताते हैं, कहानियां बताते हैं, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, शिव बाबा के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। ज्यादा कहो तो कहेंगे नहीं, वो तो है ही है सदाशिव, या फिर शंकर के लिए डमरू बजाने वाला बता देंगे, लेकिन शिव बाबा का वास्तविक परिचय कोई नहीं बता पाया। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उसको तो 5000 वर्ष हुए, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो वही बात हुई ना कि आज से 2500 साल पहले जीसस आए, उसके 3000 साल माने 2000 साल से 3000 साल पहले, तो 5000 साल हुआ। तो बाबा कहते हैं, वो भी ये कहते हैं, इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी। अभी बाबा पूरा कोर्स आपको रिवाइज करा रहे हैं। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही क्या हुआ? जब भगवान ने गीता सुनाई तो गीता से क्या हुआ? देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। हर धर्म के धर्म पिता का पता है कि सभी को, लेकिन ये देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको भी पता नहीं है। तो ये परमात्मा ने स्थापन किया हुआ धर्म है तो कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, वो कोई नहीं जानते। फिर तो आधा कल्प जब देवता धर्म भगवान ने स्थापित कर दिया तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ न कोई धर्म स्थापक हुआ। इतने स्ट्रांग धर्म स्थापित किया जो एक ही धर्म आधा कल्प तक चला, इसके बीच में और कोई धर्म नहीं आए न शास्त्र आए, वो आधा कल्प दो युग तक एक धर्म चलता रहा। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया, गोया बाप ने तीन धर्म स्थापन कर, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। यह है लीप धर्म, एक्स्ट्रा धर्म। ये जो ब्राह्मण धर्म है वो बहुत छोटा सा धर्म है, इसकी आयु थोड़ी रहती है। ये संगम युग है, तब तक ये देवता बन जाएंगे, तब तक ये ब्राह्मण धर्म है। तो सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है। फिर बाबा ने खुद ही कहा, जन्म मरण में नहीं आता हूं, जन्म है परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मेरी पालना नहीं होती है। जैसे माँ बच्चे की पालना करते, कृष्ण की दिखाते हैं ना, उसको तो एक नहीं दो दो माँ दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरी ऐसी कोई पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं, रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे परंतु वो प्रॉमिस तो करते हैं हम बाहर निकलेंगे पाप नहीं करेंगे, लेकिन परंतु ये है ही पापात्माओं की दुनिया, तो बिना पाप किए कैसे बचेंगे, है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। कहते हैं ना बच्चा रोता है वहां वहां करता है, बाहर निकलता है माना वहां की वहां रही। अभी यहां नया शुरू, जहां थे वहां आके खड़े हो गए, वहां की वहां रही। यहां भी अभी बाबा फिर एग्जाम्पल देख करके कहते हैं, यहां भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं, संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा प्योर आती है, धर्म स्थापन करने आती है। तो हम भी धर्म स्थापन कर रहे हैं, कितना महान धर्म, पवित्र धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा हमें अंडरलाइन करते हैं कि तुम भी धर्म स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी कोई पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती। परम धाम से कोई प्योर आत्मा आती है, चाहे वो द्वापर युग में आए, द्वापर के अंत में आए, या कलयुग की शुरुआत में भी आए, वो सजा नहीं खा सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उसको कोई सजा मिल ना सके। तो ये जो क्रॉस पर चढ़ाया, जो तकलीफ हुई, वो जिसके शरीर में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसको हुई। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने तो कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है, वो तो आई पवित्र, ऊपर से शुद्ध है, तो आकर के सीधा कैसे सजा भोगेगी? कुछ पाप करे बाद में सजा भोगे। वो जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उसको दुख होता है, वो सहन करते हैं। जैसे बाबा अपना एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होती है, माना ब्रह्मा बाबा को होता है, साकार शरीर को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। तो जो भी तकलीफ है वो शिव बाबा नहीं भोगते, वो निकल जाते हैं। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। वो बाद में जब तमो बनेगी तब दुख भोगेगी, लेकिन आई है तो सतो प्रधान है। नई नई आत्माएं आती है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकते। कलयुग में भी किसी का रोल बहुत थोड़ा होता है, वो कलयुग के अंत में आती है तो भी उसका नामाचार कितना हो जाता है, भपका हो जाता है, नाम रोशन हो जाता है। बाबा कहते वो दुख नहीं भोग सकती आकर के, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इसको माना दादा को होती है, ना कि शिव बाबा को। ब्रह्मा बाबा को भी कभी खांसी हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ, तो वो शरीर को होता है, शिव बाबा को उसकी कोई फीलिंग नहीं। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। ये रहस्य जो है वो बाबा ने हमें बताया और कोई को ये पता नहीं। ये लोग तो सीधा बोलेंगे इसको क्रॉस पर चढ़ाया, देखो उसको भी तकलीफ हुई, ऐसे। ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई हुई है। इस संगम पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है। अभी की यादगार, अभी के हम जो भी एक्शन होती है, बाबा ज्ञान सुनाते हैं, वो सारा भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में चला आता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर पहले किसकी पूजा शुरू होती है? शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। पहले भक्ति कौन करता है? पहले भक्ति कौन करेगा? पहले भक्ति कौन करेगा? बाबा कहते हैं पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे फिर पूज्य थे। तो जब पूज्य थे फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले बुद्धि में आना चाहिए, अब फिर वही बात पर आओ, क्या आना चाहिए? बाबा हमारा क्या है? आज टीचर बनकर पढ़ा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके। कितनी बड़ी बात है, हम जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ऐसी सारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र देखा हुआ है ना सभी ने, ध्यान से देखा है? उसके नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, कि ये जो है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये बार बार नशे में रहो, कि ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये कोई सामान्य पढ़ाई नहीं है, कौन पढ़ा रहा है। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं, बाकी जो सेंटर्स पर बच्चे हैं वो भी मुरली सुन रहे होंगे, तो उनकी बुद्धि में क्या होता है। जब साकार में बाबा मुरली सुनाते थे तो मधुबन में जो थे वो तो समझते हैं कि शिव बाबा इनके तन में आकर के अभी सुना रहे हैं, सेंटर पर जो थे वो क्या सोचते। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी, उस समय तो लिखते थे, एक एक मास के बाद वो लिथो होकर पोस्ट होकर जाती थी, और अभी तो सब ताजी मुरली सुनते हैं। जो यहाँ मुरली चलती है वही सब सेंटर्स पर चलती है, और ये कितने दिन पहले से मिल जाती है, अभी तो कई हमको तो एक एक मास की इकट्ठी मुरली भी मिल जाती है। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी, और सत्संगों में ऐसा थोड़े ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं, तो धीरे धीरे और इम्प्रूव हुआ, तो टेप में मुरली भरते थे और सब सेंटर्स पर जाती थी, तो सेंटर्स पर टेप से ही सुनाते थे। बाबा कहते वो दुनिया में थोड़ा ऐसा होगा, वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ वो बात नहीं है। हमारी बुद्धि में डायरेक्ट निराकार शिव बाबा बुद्धि में रहते हैं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, और क्या है, पीसफुल ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए, जो अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता, वजीर माना राय देने वाला सलाहकार, क्यों नहीं रहता वहां वजीर। कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते हैं, सतयुग में वजीर नहीं होगा, क्योंकि महाराजा महारानी में इतनी पावर रहती है, इतने खुद का उनकी बुद्धि शुद्ध है, प्योर है, उनकी जजमेंट इतनी परफेक्ट है कि किसी से राय लेने की जरूरत नहीं। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। अभी तो एक वजीर क्या कितने मिनिस्टर हैं, हर स्टेट की अलग मिनिस्ट्री है, और उसके आगे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, तो कितने वजीर हो गए, कितने सलाहकार हो गए। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं। अब तो कितनों से राय लेते हैं तो भी कभी कभी जजमेंट गलत हो जाती है। बाबा कहते हैं उनको राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। आज बाबा टीचर बन के पढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो सारी बातें बताई वो बाबा कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं। क्योंकि क्यों पतित बन गए? क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। सतयुग में पापात्मा नहीं होते, वहाँ है पुण्यात्माएं। वो है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं। परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं कि योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहां से नंगे अर्थात अशरीरी आए हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है माया पांच विकारों को कहा जाता है। ये है पांच भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर वन है उसमें सारे भूत आ जाएंगे, दे अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, अर्थात विकारों से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशियस से वॉइसलेस बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है। जब ये कहते हैं सभी को कि आपको विशियस नहीं वॉइसलेस बनना है, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अभी मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। जो कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी, तो उसको ये जवाब दो कि अभी ये दुनिया ऐसे भी खत्म होने वाली है, अभी आगे चलनी नहीं है, इसलिए पवित्र बनना है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वो कसम उठाते हैं झूठा, वो लोग कसम उठाते हैं ना भगवान के नाम से, हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन वो झूठा क्यों कहा बाबा ने? वो कसम उठाते हैं भगवान के नाम से, वो झूठा क्यों? हाँ, गॉड जिसके लिए, गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं, तो बिना जाने उसके नाम से कसम उठाया तो गलत हो गया। वो कब कैसे आता है उसका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, अभी तुमको परिचय मिला है, दुनिया भर में कोई भी गॉडफादर को नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है, दुनिया भर में कोई गॉडफादर को नहीं जानते, हम जानते हैं। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, ये उसका मुख्य ऑक्यूपेशन है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है। क्या परिचय दिया? कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी किसकी होती है? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं, कब? मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है, ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, और फिर कौन सा धर्म स्थापन करता हूं है? कौन सा धर्म? बाबा कहते मैं पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं, कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको कौन पढ़ाता है? निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया कि 84 लाख जन्म है। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है। फिर हमको कहां जाना है? फिर हमको स्वर्ग में जाना है। ऐसे सीधा स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पहले कहां जाएंगे? पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने टीचर बन करके पूरी पढ़ाई पढ़ाई, पूरा कोर्स रिवाइज कराया, आत्मा से लेकर 84 जन्मों तक सारे सब्जेक्ट आ गए, उसमें हिस्ट्री भी आई, ज्योग्राफी भी आई, मैथ्स भी आया, सब आया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इसमें पूरा मुरली का सार भी आया और होमवर्क भी मिल गया। आज का वरदान बहुत सुंदर वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी ये स्मृति में लाओ, सारे खजाने हमारे अंदर भरपूर होंगे तो चेहरे पर क्या क्या दिखाई देगा। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है वह भी उसके चेहरे से दिखाई देता है। ज्यादा खजाना है वो भी दिखाई पड़ेगा, कम खजाना है वो भी दिखाई पड़ेगा। जैसे बाबा मिसाल भी देते, जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह जलक और फलक दिखाई देती है, ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। ये कितनी बड़ी कंडीशन है, सेवाधारी तब कहलाएंगे जब सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ये अव्यक्त इशारे, कौन सा टॉपिक चल रहा है? महान आत्मा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। इसका क्लैरिफिकेशन है, जब एक दो को मीठा खिलाते हो उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ, मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। टोली खिलाते हैं ना तो थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, तो ये कहते हैं खुद ही मीठे बन जाओ। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे जब मीठा खिलाते खाने वाला भी खुश खिलाने वाला भी खुश। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते दूसरे को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि मीठा बोल मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति।